वैसे विराट कोहली भी अच्छे एक्टर है,
उनका
स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा।
दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला है, दिल्ली वाले वो तो हमेशा बोलते कि हम दिल्ली वाले ना थोड़े बिंदास होते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूँ, वो विराट, एंड आई थिंक आई लव विराट। छोले भटूरे खाने वाला आदमी दिल्ली हो ही नहीं सकता है। जो आदमी छोले भटूरे खाता है वो चिल्लाउट ही हो सकता है। जिंदगी का सबसे बड़ा सुख छोले भटूरे और राजमा चावल। बहुत से लोगों को जो सिंगल है ना वो सलमान भाई को देख के खुश है। जितने भी सिंगल लोग हैं उन सबके गुरु सलमान भाई। मेरा बचपन, मेरा टीनेजर, मेरी जवानी, मेरा 40s और मेरा 50s सब शाहरुख खान को देख के ही गुजरेगा। उसकी आंखों में प्यार, वो तहजीब, वो लव फॉर अदर्स, वो इतना जेन्युइन है कि आपका मन ही नहीं करता। अगर आप उसको ऐसा हो कि अगर आपके सामने से शाहरुख खान गुजर रहा है आप मुड़ के नहीं देखो, ऐसा हो ही नहीं सकता।
अगर आप फिल्मों के फैन हो या अगर आप एक एस्पायरिंग एक्टर हो तो आई प्रॉमिस यू आपको ये एपिसोड बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप एक हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के फनाटिक हो, अगर आप हिंदी फिल्म्स के नर्ड हो, आपको ये एपिसोड बहुत बढ़िया लगेगा। और अगर आपको डीप कॉन्वर्सेशंस अच्छे लगते हैं तो आई प्रॉमिस यू मुकेश छाबड़ा सर की बातें आपको सुननी चाहिए। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा इस एपिसोड के बारे में, बस ये कहूँगा कि हर फिल्म फैन को ये वाला एपिसोड एंड तक देखना चाहिए। ये है भारत के वन ऑफ द बेस्ट एंड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड कास्टिंग डायरेक्टर्स मुकेश छाबड़ा ऑन TRS। मुकेश छाबड़ा सर कैसे हो, कैसे हो, कैसे हो?
बहुत अच्छा हो यार, मैंने बोला ना बहुत अच्छा लग रहा है। सडनली एक कामनेस आ गई मेरी बॉडी में, बिकॉज मैं इतने यू नो ऐसे हेक्टिक ऑफिस शेड्यूल से आता हूँ जहाँ बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत कुछ हो रहा है। अभी मैं आराम से यहाँ बैठा हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग योर एनर्जी।
अरे आई एम ग्लैड सर। वुड यू कास्ट मी इन अ फिल्म सर?
100% व्हेनेवर यू हैव टू जस्ट टेल मी व्हेन, बिकॉज़ आई यू ऑलरेडी हैव अ ग्रेट फॉलोइंग, पीपल लव योर वर्क एंड द वे यू इंटरेक्ट विद पीपल, इतना अच्छे से बात करते हो, तो चलो कभी बोलो, आप बताओ कब करने वाले हो, यहीं से स्टार्ट करते हैं।
नहीं नहीं थैंक यू सर, आई एम श्योर आपको बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हो कम अप टू यू सर कि सर प्लीज एक फिल्म में कास्ट कर दो ना।
दिन भर होता है, मुझे हमेशा लगता है कि ये आर्ट एक अलग तरीका है, लेकिन एक्टिंग ऐसा प्रोफेशन है जिसको सब लोग ट्राई करना चाहते हैं। यू नो यू बीट कॉप्स, यू बीट डॉक्टर, यू बीट बिजनेसमैन, यू बीट यू गो टू वेरेवर यू गो, यू मीट 10 पीपल, अरे कास्टिंग करते हो, मैं भी एक बार मेरे लिए भी कुछ रोल हो तो बता देना। सर आप तो अच्छे, आप तो कॉप हो, आप DCP हो, पुलिस में हो, नहीं कोई डॉक्टर को भी मन में जाओ या किसी डॉक्टर के पास में जाओ, तो सबको ना अल्टीमेटली अपने आप को स्क्रीन में देखना है, बिकॉज फिल्म हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है ना। सबने इतने लोगों को देखा, हम सब फिल्म ही देख के तो बड़े हुए हैं। आप जितना मर्जी इग्नोर कर लो, लेकिन हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा पार्ट है फिल्म।
आप लोगों को ना कैसे कहते हो?
या मैं ना कहने से बहुत डरता हूँ, मैं सिर्फ यही उनको बोलता हूँ कि आपके लिए कुछ और होगा, इसमें आप शायद करेक्ट नहीं है।
ओके,
क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से नो टू पीपल, because not everyone can take it positively. और क्या है, जो कास्टिंग बिजनेस है ऐसा सच के जिससे आपने, जिसको आपने कास्ट किया वो आपके दोस्त हैं, जिसको आपने नहीं कास्ट किया वो सोचेगा कि मुझे कास्ट नहीं किया। तो ये बहुत सेंसिटिव स्पेस होता है, बट आई समहाउ पीपल जब वो कास्टिंग देख के बोलते हैं देन दे ऑलवेज मैसेज की ओवर आई आई विल नॉट राइट फॉर द पार्ट। जैसे सबसे डिफिकल्ट होता है बच्चों को ना बोलना, क्योंकि व्हेन आई डिड बजरंगी भाईजान और चिल्लर पार्टी और दंगल, जब आप बच्चों को ना बोलते जो शॉर्ट लिस्ट में होते हैं, दैट्स ब्रेक माई हार्ट। क्योंकि हाउ डू टेल दैट स्मॉल चाइल्ड कि बेटा अगली फिल्म करते हैं, इसमें ना वो मुन्नी में उस बच्ची का हो गया है, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट आई थिंक आई जितना मैं ऑनेस्ट रहने की कोशिश करता हूँ विद एक्टर के साथ उनको एक्सप्लेन करने में, वो शायद वर्क करता है मेरे लिए।
क्योंकि कोई एक स्टार कैसे बन सकता है अकॉर्डिंग टू यू? जितनी भी जर्नीज आपने देखी है, आपने बहुत सारे लोगों की जर्नीज देखी, थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, किन किन की जर्नीज देखी है आपने?
मैंने एक सबकी जर्नी देखी, स्टार्टिंग फ्रॉम रणवीर सिंह का फर्स्ट ऑडिशन हो, चाहे श्रद्धा कपूर का फर्स्ट ऑडिशन हो, चाहे राजकुमार हो, ऑफकोर्स सुशांत सिंह राजपूत, कृति, सानिया, फातिमा, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जिजान अयूब, and Minal Thakur and Tripti Dimri and Avinash Tiwari and Debindu. Just take everyone's journey I've seen closely because I've been part of everyone's journey. So sabko bahut closely dekha hai. I think so Jaydi Balawat. मतलब सबको विजय वर्मा सबको डिटेल में देखा है उनके फर्स्ट ऑडिशन थे आज तक उन जन्ने को फॉलो किया है आई थिंक द वन थिंग आई हैव नोटिस अबाउट ऑल दिस पीपल दे ऑनेस्ट
ऑनेस्ट
वेरी 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 ऑनेस्ट टुवर्ड्स क्राफ्ट
ओके
व्हेन दे एक्ट दे आर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट आई ऑलवेज से दैट कि आप जब आप कैमरा के सामने होते हो अगर आप जितने ऑनेस्ट हो आपकी लाइफ उतनी आसान हो जाती है
ये ज्यादा समझाने की जरूरत है आपको
क्योंकि होता क्या कि जब आप हम बहुत आसान लगता है कि ऑनेस्टी ऑनेस्टी हम लोग बहुत ज्यादा ऑनेस्टी पे बात करते हैं ना एज एन एक्टर ऑनेस्ट होना बहुत जरूरी है कि आप सिर्फ एक्टिंग की तरफ फोकस कर रहे हो यू आर नॉट फोकसिंग ऑन कि मैं मेरा ऑडिशन भी होगा कि नहीं होगा मैं कैसे परफॉर्म करूँ या मैं क्या करूँ आप दिल लगा कि इट्स लाइक मेडिटेशन ओनली थिंकिंग अबाउट एक्टिंग
मतलब उस 30 सेकंड्स के लिए आप कैरेक्टर बन चुके हो
आप उस वक्त सिर्फ आप एक्टिंग के बारे में सोच रहे हो कैरेक्टर के बारे में सोच रहे हो और परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो जैसे मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि राजकुमार राव को लाइफ में जितनी बार भी ऑडिशन किया ना उसने हर बार क्रैक किया है राइट फ्रॉम वेदर इज गैंग्स ऑफ वासेपुर और शाहिद और कायपोची और जो भी फिल्म उसने ऑडिशन दिया वो सब उसको मिली क्योंकि वो इतना ऑनेस्ट होता है कैमरा के सामने कुछ लोग क्योंकि तो ऑनेस्टी हमेशा हमेशा लगता है कि जो ऑनेस्टी इंसान के अंदर होती है ना वो कैमरा के सामने आती है आई एक्चुअली बिलीव इन दिस कि इफ यू आर ऑनेस्ट एज अ पर्सन यू कैन डेफिनेटली कैन एक्ट
ओके
या बिकॉज़ आई हैव नोटिस मनोज बाजपेयी आई हैव नोटिस नवाजुद्दीन सिद्दीकी इफ यू मीट देम एट द पर्सन रियलाइज कि हाउ ऑनेस्ट दे आर टुवर्ड्स देयर सेल्फ दे टेक द सेल्फ वेरी सीरियसली दे डोंट दे आर वेरी डिसिप्लिन They take the profession very seriously. They don't make fun of other actors. They are genuinely into this.
और जो अंदर होता है वो बाहर दिखाई देता है. Basically अब यही कह रहा हूँ.
जो छुपा नहीं सकते हो ना आप. आपके अंदर में जितने चालाकी है ना वो सब कैमरे पे सब दिखती है और आपकी आंखों में सब दिखते हैं. मैंने बहुत सारे एक्टर को देखा ऑडिशन करते हुए वो सोचते रहते हैं कि अरे मुझे जज कर रहे हैं अच्छा करूंगा कि नहीं करूंगा अरे मेरे बाल ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे मेरी स्किन ठीक लग रही है कि नहीं लग रही तो समझ में आ जाता है कि नॉट फोकसिंग ऑन
ये सब भी आप देखते हो
एवरीथिंग
लुक्स देखते हो
मैं अब लुक्स नहीं देखता हूँ मैं ये देखता हूँ कि वो क्या देख रहा है वो परफॉर्मेंस पे ध्यान दे रहा है कि वो बाकी चीजों पे ध्यान दे रहा है मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो अच्छा एक्टर होता है ना वो अच्छा दिखने लगता है नथिंग इज मोर खूबसूरत देन योर टैलेंट
ओके एक थोड़ा बिजनेस सवाल है आपके लिए पैरेलल बिजनेस सवाल आज मुकेश छाबड़ा कास्टिंग एक ब्रांड बन चुका है आपने ये रेप्यूटेशन कैसे कमाई
आई थिंक फिल्म मेकर की वजह से कमाया उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट किया और जिन लोगों ने नए टैलेंट जो भी फिल्म मेकर ने नए टैलेंट को अपनाया उसकी वजह से मुझे बहुत सारा प्यार मिला क्योंकि अगर मुझे गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं मिलती उतने सारे एक्टर नहीं आते तो शायद उसके बाद की फिल्में नहीं मिलती
गैंग्स ऑफ वासेपुर मिली कैसे कैसे
और रिचि मेहता करके एक मेरे दोस्त है जिन्होंने डेली क्राइम बनाया उसके मैंने एक फिल्म किया था चिल्लर पार्टी बच्चों के साथ तो उस प्रोसेस के दौरान बिकॉज आई वर्क विद इम्तियाज इन लव आजकल फर्स्ट लव आजकल तो मैं बहुत सारे एक्टर्स को जानता था तो बहुत सारे एक्टर को जानता था तो मैं बहुत सारे फिल्म मेकर को असिस्टेंट डायरेक्टर भी था तो समहाउ अनारा गॉट टू नो दैट आई असिस्ट एंड आई नो लॉट ऑफ एक्टर आई कास्ट फॉर फिल्म तो ऐसा प्रोफेशनली फिल्म बोला कि काम करो
मतलब वर्सोवा की वजह से
वर्सोवा की वजह से आराम नगर की वजह से मुझे तिग्वांशु धूलिया मिले अनुराग कश्यप मिले विक्रम मोटवानी मिले सुधीर मिश्रा मिले तो वहाँ से फिर रिश्ता बना और गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद तो आप यू नो पीपल स्टार्टेड नोटिसिंग की वर्ड कास्टिंग डायरेक्टर इज क्योंकि बहुत कम लोग इस जॉब को बहुत सीरियसली कर रहे थे इस हिंदुस्तान में क्योंकि ये कोई एक सेट डिपार्टमेंट नहीं था तो मुझे लगा कि डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो शायद बहुत जल्दी एक फुल फ्लैश डिपार्टमेंट बन जाएगा अभी तो लोग इसको सीरियसली नहीं ले रहे हैं आई थिंक इन फ्यूचर दे विल तो फिर मैं उस पर लगा रहा कंटिन्यूसली काम करता रहा फिर एक कंपनी फॉर्म हुई और अब कंपनी ग्रो हो गया फिर लोगों ने और काम फिर एक के बाद फिल्में फिर काय पोचे भी हिट हो गया बजरंगी भाईजान भी थी उसके अंदर फिर डीडे भी थी फिर पीके भी थी तो एक एक करके फिर फिल्म के बाद फिल्म एक के बाद एक फिल्म जो है वो चलती गई
ओके अब सलमान खान से मिलो
बहुत बार आई थिंक वो चिल्लर पार्टी से रिश्ता शुरू हुआ था और आज तक उनके साथ रिश्ता इतना अच्छा है क्योंकि उनके साथ चिल्लर पार्टी का उनका प्रमोशन जो उन्होंने सपोर्ट किया था बीइंग ह्यूमन की पहली फिल्म थी चिल्लर पार्टी उसके बाद बजरंगी भाईजान के बाद तो जब मुन्नी हुआ तो ऑफकोर्स देन उसके बाद ट्यूबलाइट हुआ, उसके बाद भाई की जितनी फिल्में टिल नाउ टिल लास्ट फिल्म ऑल्सो दैट आई डिड ऑल दिस फिल्म्स. आई एम लाइक आई थिंक द पर्सन यू कैन ऑलवेज पिक अप योर फोन, 3 बजे भी रात को उठ के फोन कर दोगे तो यू विल आंसर योर फोन.
अगर आपको बिरयानी खानी है तो
बिरयानी खानी है, उनसे मिलना है तो वो वही के आदमी है जो मतलब हमेशा सबके लिए अवेलेबल है, खड़े हैं सपोर्ट करने के लिए.
डू यू फील कि वो मिसअंडरस्टूड है थोड़े पब्लिकली?
ऑनेस्ट है ना. और ऑनेस्टी को लोग मिसअंडरस्टैंड भी तो करते हैं ना. प्रॉब्लम यही है कि जब ज्यादा ऑनेस्ट होते हो, आप ऑनेस्टी से कुछ बोल देते हो, पीपल टेक इट वेरी डिफरेंटली.
ओके, वो एज अ पर्सन इन पर्सन कैसे, एज अ ब्रो कैसे है? मतलब जब आप उनके साथ चिल कर रहे हो उनकी ऑरा कैसी है?
उनका उनके बहुत सारे मूड होते हैं.
ओके,
तो आपको ना उनको मूड चेक करना पड़ता है कि भाई का मूड कैसा है.
हर आर्टिस्ट की तरह?
हर आर्टिस्ट की तरह, बिकॉज क्या है, ये सब आर्टिस्ट है ना, ये सबके मूड का पता नहीं होता वो किस स्पेस में है. और ये आपको मुझे लगता है किसी भी दोस्त के साथ है, एक्टर के साथ है, डायरेक्टर के साथ अगर आपके रिश्ते हैं तो आपको उनके मूड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. लाइक व्हेन आई एंटर इन योर एरिया यू गेव मी अ वेरी गुड एडवाइस, सो आई वाज कि ये इसका स्पेस है, आई शुड गिव द फुल रिस्पेक्ट. तो सेम वे व्हेन आई सी मनोज वाजपेयी फोकसिंग ऑन सम कैरेक्टर आई डोंट गो एंड डिस्टर्ब हिम. व्हेन आई सी भाई का मूड इज इन अ वेरी डिफरेंट स्पेस, ही थिंकिंग समथिंग, इट्स नॉट द राइट टाइम टू गो एंड टॉक टू हिम. एज एन आर्टिस्ट इट्स ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी अदर पीपल्स मूड, बिकॉज हम लोग रोज डिफरेंट डिफरेंट मूड के साथ उठते हैं. हम ये बॉम्बे शहर ऐसा है, आप दिन में 10 बार दुखी होते हो 10 बार खुश होते हो. ये एक ही शहर है जहाँ पर आप रोज मोटिवेट होते हो, रोज बोलते हो शिट यार कुछ हो नहीं रहा,
या मैं और भी काम कर सकता
और कर सकता हूँ, एंड दूसरे के बहन चोद मुझसे ज्यादा काम कर रहे हैं, यू नो एवरीथिंग पीपल थिंक की अरे. एंड ऑल्सो वी यू सी सो मेनी वीडियोज राइट. तो ये एक ही शहर है जहाँ पे एवरी डे यू फील हैप्पी, एवरी डे यू फील सैड. तो सेम विद भाई, मैं उनको मूड को देख लेता हूँ कि अभी जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए. एंड दैट्स विद एवरीवन.
उनकी लाइफ में कैसी टेंशन होती है?
उनकी लाइफ में यार सबसे बड़ा स्टार है हिंदुस्तान का,
प्रेशर है
तो उनके ऊपर भी तो बहुत प्रेशर होगा. तीस साल से वो एक चीज को मेंटेन करके चल रहे हैं, तो उससे बड़ा प्रेशर जो है वो किसके पास होगा. सेम विद शाहरुख सर, सेम विद आमिर सर, सबके ऊपर जो प्रेशर होता है हमको ने, क्योंकि हर आदमी के स्टेज पे प्रेशर होता है.
ऊपर वाले ने उनको इतना सक्सेस क्यों दिया आपके अकॉर्डिंग?
है तो गॉड गिफ्ट ही होता है, ये हर किसी को इतने प्यार नहीं मिलता. मुझे लगता है कि ये बहुत कम ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जिसको बोलते हैं ना कि भगवान का बंदा है. आई थिंक इसमें से एक मुझे लगता है सलमान खान है जो भगवान के बंदे हैं, जिनको इतना प्यार मिलता है हर मतलब छोटे बच्चे हों या हमारी एज के हों या कॉलेज स्टूडेंट हो या टीनेजर हो या ओल्डर पीपल हो या दादा दादी के उम्र नाना ने उनसे भी ओल्ड हो, सब लोग सलमान खान.
ओके, लोग उनके बारे में क्या नहीं जानते हैं? Like, what do people not know about him?
बहुत सारे लोग बहुत सलमान भाई बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं. अगर आप उनके घर भी देखोगे ना, जब बहुत कम लोगों को मालूम है कि वो एक जहाँ पे वो रहते हैं वो एक छोटा सा 1 BHK ही है गैलेक्सी अपार्टमेंट के नीचे, जहाँ पे एक सोफा है और एक उन डाइनिंग टेबल है और एक जहाँ पर वो बात करते हैं, बात कर लोगों से बात करते हैं, एक वो छोटा सा एरिया और एक पीछे जिम है छोटा सा और एक रूम है. दैट इज सलमान खान, द बिगेस्ट स्टार ऑफ दिस कंट्री. तो वो बहुत ज़्यादा सिंपल लाइफ जीते हैं, उनको किसी तरह का और तरीके का शौक नहीं है कि मुझे बहुत सारे ब्रांड पहनने हैं या मुझे बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को खरीदना है. तो वो बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं लोग, और वो खाना भी जैसे खाते हैं, देर इज़ नो डाइट, देर इज नो टेंशन, देर इज नो एक्स्ट्रा ध्यान रखना कि मुझे उस सब खाएंगे नॉर्मल. ही लिव लाइक अ नॉर्मल लाइफ. वो बहुत आई थिंक ही सेड उनको इतना प्यार मिलता है बिकॉज ही इज नॉर्मल.
या ये उनका आर्टिस्टिक प्रोसेस है,
आर्टिस्टिक प्रोसेस वो ऐसे ही है. फिर हम कि जब आदमी थोड़ा ऐसा होता है ना, हमें लगता है इनका कुछ प्रोसेस होगा, वो ऐसे ही है. मतलब मैंने तो कोई भी उनके अंदर चेंज नहीं देखा, मुझे भी अब लगभग 10-15 साल के साथ इंटरेक्शन करते करते हो गया, मैंने भी कुछ चेंज नहीं देखा उनके अंदर.
मुझे बजरंगी भाईजान बहुत अच्छी लगी थी.
थैंक यू. मेरे लिए और मेरी जिंदगी में भी बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, क्योंकि इतना प्रेशर था ना कि वो एक्चुअली अब सलमान खान की फिल्म है पर वो बच्ची इतनी इम्पोर्टेंट है कि वो बच्ची इतनी इम्पोर्टेंट हो जाए कि लोग सलमान खान के साथ साथ उस बच्ची को भी देखे.
और वही हुआ.
वही हुआ, क्योंकि होता है ना ऐसे बोलते हैं जब सलमान खान की फिल्म आती है तो और दिखता नहीं है. तो ये एक ऐसी फिल्म थी, वो आई रिमेम्बर कबीर खान टोल्ड मी के मुकेश ये सबसे बड़ा चैलेंज है. आई वाज थिंकिंग कि मेरे दिमाग में एक टारगेट था कि मेरे को ना हमेशा वो मासूम का जुगल अंधराज का टारगेट था कि यार जैसे वो मासूम में वो बच्चा था ना, ऐसा बच्चा चाहिए जिसको पूरी दुनिया प्यार करे. दैट वाज अ होल चैलेंज मैंने लिया था कि एक ऐसा बच्चा चाहिए जिसको पूरी दुनिया प्यार करे. तो इतने ऑडिशन करके वो बजरंगी भाईजान की वो मुन्ने मिले.
और सलमान खान ने केमिस्ट्री कैसे फॉर्म करी बच्ची के साथ?
हमने ना दो बच्चों का शॉर्टलिस्ट किया था.
ओके.
और मैं बहुत आई वाज वेरी क्लियर कि हर्षाली ही होगी. 100% क्लियर. मी एंड कबीर सर, देन आई रिमेम्बर कबीर सर कॉल्ड मी सर कि मुकेश भाई के पास लेके जाना है दोनों बच्चों को, सर ही कैन ऑल्सो इंटरेक्ट विद फिगर आउट. तो दोनों बच्चों को साथ लेके हम लोग गैलेक्सी पार्टन में गए. एंड भाई वॉज इन अ वेरी डिफरेंट मूड. तो हमने थोड़ा वेट किया कि इनका मूड, भाई अपने मूड में आए क्या. तो फिर उसके बाद भाई दोनों बच्चों से मिले. दोनों से इतने प्यार से उन्होंने बात किया. एंड देन भाई लुक्ड एट मी, आई लुक्ड एट भाई, एंड ही लुक्ड एट कबीर खान. वो बच्चे चले गए, बोला कि वो हर्षाली ने से थैंक गॉड. कबीर सर बोलते थे थैंक गॉड, यू नो. एंड वो अदर छोटी बच्ची भी बहुत 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 प्यारी थी, जो दूसरी वाली बच्ची थी. उसको मैंने बजरंगी भाईजान में एक और सीन दिया था, जब वो ढाबे पे एक बच्ची बैठी होती है कि इसको कहीं तो यूज करना है. तो उस बच्ची को मैंने बुरा ना लगे तो इसको उस दूसरी वाली बच्ची को बजरंगी भाईजान में छोटा रोल दिया. फिर उसी बच्ची को, वो इतनी अच्छी थी कि मेरे मन में हमेशा वो गिल्ट था कि यार ये बच्ची बहुत अच्छी है, इसका बजरंगी भाईजान में कुछ नहीं हो पाया, क्या करूँ. फिर उसको ब्रह्मास्त्र में जो मेन बच्ची थी वो उसमें, फिर उसको ब्रह्मास्त्र में काज किया. क्योंकि आपके मन में हमेशा एक सवाल रह जाता है कि यार उस बच्चे का क्या है. शी वाज आल्सो रियली गुड, शी वाज नॉट राइट राइट एज अ मुन्नी, पर वो कहीं ना कहीं उसको यूज करना है. तो उसके बाद वो बच्ची को ब्रह्मास्त्र में, जिस ऑफनेज में रणबीर रहता है उसमें जो मेन बच्ची होती है वो वही बच्ची है जो बजरंगी भाईजान में सेकेंड ऑप्शन था.
आपने उनके मीम्स देखे हैं?
मुझे तो आए
सिंगल बॉय मीम,
सिंगल बॉय मीम. तो मतलब आई लव दैट पावर. मुझे लगता है कि वो सिंगल, बहुत से लोगों को जो सिंगल है ना वो सलमान भाई को देख के खुश है.
हाँ, दैट्स ट्रू,
दैट्स ट्रू भाई.
मैं भी वैसा ही हूँ भाई. आप हमारे आइडल हो.
हम सब सबके आइडल है. जितने भी सिंगल लोग हैं उन सबके गुरु सलमान भाई हैं.
मीम कल्चर में उनके मीम्स फट रहे हैं अभी.
मुझे तो बड़ा मजा आता है. एंड आई थिंक मुझे उन लोगों को बहुत प्यार है जो लोग मीम बनाते हैं. यार ये कैसे आइडियाज आते हैं, कौन बैठ के जी लिखता है, कौन बैठ के जी सोचता है. मुझे उन लोगों से मिलना है. कहाँ बैठते हैं ये लोग, कौन सी ऐसी एजेंसी है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये लोग बैठ के बनाते हैं और आइडियाज लेकर आते हैं. एक मैच, कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है या किसी कंट्री के साथ मैच होता है, मैच खत्म होती है उसके बाद 5 मिनट बाद मीम की लाइन लग जाती है. कमाल है ना, ये भी एक बहुत कमाल साइड है लोगों की, कहाँ से आइडियाज आते हैं.
वैसे विराट कोहली भी अच्छे एक्टर है.
उनका
स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छा है.
दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला है, दिल्ली वाला है. वो तो हमेशा बोलते कि हम दिल्ली वाले ना थोड़े बिंदास होते हैं, क्योंकि मैं भी दिल्ली का हूँ. रवो विराट, एंड आई थिंक आई लव विराट, एंड आई हैव मेट हिम कपल ऑफ टाइम्स इन लाइक अ सोशल गैदरिंग. ग्रेट गाय, अमेजिंग. अब तो फिर भी, क्योंकि जब से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, थोड़ा सा मुझे सीरियस लगने लगा, लेकिन वो बहुत चिल्ड आउट है ना. छोले भटूरे खाने वाला आदमी हो ही नहीं सकता. जो आदमी छोले भटूरे खाता है वो चिल्ड आउट ही हो सकता है. जिंदगी का सबसे बड़ा सुख छोले भटूरे और राजमा चावल. जो ये चीज़ों को करता है वो सबसे खुश इंसान है.
उन्हें एक्टर बनना
नहीं,
नहीं,
पर वही था मेरे. वो बहुत अच्छा डांस करते हैं, वो बहुत अच्छी मिमिक्री करते हैं, वो बहुत अच्छी. इवन यू सी एन एड ऑल्सो, उनका कॉन्फिडेंस, जो इनर कॉन्फिडेंट है ना, वो बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग है. क्योंकि तभी आप इतने स्ट्रांग हो सकते हो जब आपका इनर बहुत स्ट्रांग होता है. जब आपका बेसिक कॉन्फिडेंट इंटैक्ट हो ना, तो आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ ना, वहां भी आप सक्सेसफुल हो.
सेल्फ बिलीफ का एक रोल बहुत स्ट्रांग है एक्टिंग में और हर प्रोफेशन,
हर प्रोफेशन में. हर प्रोफेशन में, लाइक योर सेल्फ बिलीव इज दैट कि यू मेड दिस, यू क्रिएटेड दिस, एंड यू लुक एट वेयर यू आर टुडे. लाइक एवरीवन लव योर शो. सब लोग फॉलो करते हैं कि इसको ये शो बहुत डिफरेंट है, इसको सुनना है.
मैं आपको एक थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी ओपिनियन दूं.
बोलो.
बहुत रॉ चीज कहने वाला हूँ आपको. आई फील कि पूरी सोशल मीडिया की जनता को एक्टर बनना है. आई मीन आई नो यू ऑफ कैमरा ऑल्सो. आप मेरे लाइफ के गोल्स जानते हो. मुझे जेन्युइनली बिजनेस करना, और मेरे 20 से मैंने सीखा है कि यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू वांट. अगर बहुत सारी चीजों चीज करने की कोशिश करी तो शायद एक भी चीज नहीं होगी. माय गोल इज बिजनेस. एंड मेरे जैसे है कुछ 3-4 सोशल मीडिया वाले क्रिएटर्स. टेक, अब एनीवे मैं आपको यूट्यूबर्स के नाम बताने वाला था. टेक बर्नर आपको पता है? श्लोक. वो राज शमानी, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ बिजनेस करना है. पर बहुत, मे बी इट्स लेस देन 1% ऑफ द टोटल जनता. बाकी 99% को एक्टर बनना है. क्या ओपिनियन है आपका?
इसी अगर आपको बनना है तो एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए.
हर हर किसी को,
जिसको भी लगता है, जिसके मन में ये थॉट भी आया ना, उसको एक बार तो ट्राई करना चाहिए.
आई थिंक हर सोशल मीडिया क्रिएटर के दिमाग में
अल्टीमेटली लोगों को वहीं जाना है. चाहे आप, मैं, चाहे वो जितने भी यूट्यूबर हो या जो इन्फ्लुएंसर हो या वो स्टैंड अप कॉमेडियन हो, घूम फिर के आप देखो कहीं ना कहीं आपको दिखने लग जाएंगे वेब सीरीज में या फिल्म में, क्योंकि सबका मेन गोल तो यही है. द बेस्ट पार्ट, उन्होंने अपनी एक जगह बनाई है थ्रू दिस मीडियम टू दैट दे गेट अटेंशन. ये बहुत बड़ा काम होता है कि आप अपने आप को, जो इन्फ्लुएंसर हो क्रिएटर है, खुद के क्रिएट की हुई चीज़ें ना, किसी के बिना किसी के सपोर्ट के, आपके खुद के आइडियाज़ को लेकर. जैसे बहुत सारे जैसे विराज गलानी को हमने, मैंने उसका वीडियो देखे तो उसके बाद ही उसको इस फिल्म में कास्ट किया ना, गोविंदा नाम मेरा में. यू सी आई एम इन टच विद भुवन बाम फॉर कपल ऑफ फिल्म्स, आई एम इन टच विद आशीष चितलानी फॉर कपल ऑफ फिल्म्स. तो लाइक रूही वॉन्ट्स टू नॉट गेट इन टू फिल्म, देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर कीप मीटिंग बिकॉज उनका अल्टीमेट गोल वहाँ पर, और क्यों नहीं हो. और ऐसा नहीं है कि वही, जैसे मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ एंड आई सी दे रियली गुड, ऐसे बहुत सारे सीन मैंने फिल्मों में काज किए हैं एक एक दो दो सीन के लिए, जो एक्चुअली डॉक्टर भी हैं और एक्चुअली प्रोफेशन से हैं. क्योंकि अगर आपका एक बार ट्राई मन तो, एंड क्यों नहीं करना चाहिए यार, व्हाट इज रॉन्ग इन इट, इट्स अ ग्रेट प्रोफेशन, यू गेट लॉट ऑफ अटेंशन.
आई फील कि 99% में से शायद ओनली 5% ऑफ द 99% उन्हें एक्टिंग करनी है, बाकी सब लोग को स्टार बनना है,
बाकी सब लोग को टेंशन है. मुझे लगता है कि जो इसको और इलेबोरेट करो तो लोगों को शायद क्राफ्ट से ज्यादा अटेंशन चाहिए कि ना एक्टिंग करो तो लोग देखते हैं, लोग मुड़ मुड़ के देखते हैं.
ये सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं है,
हर किसी के. क्योंकि जो लोग, अगर जो सोशल मीडिया पे नहीं भी है, जिन भी, अगर मैं किसी शादी में भी जाता हूँ मैं, अगर मैं शादी में दूल्हा दुल्हन को छोड़ के जितने भी लोग हैं मुझे मिलते हैं, सबको एक्टिंग करने हैं. बेटा मेरे को कहीं रोल में खड़ा कर दे, मुझे भी एड में ले ले, सबको ना वो मन करता है अपने आप को टीवी में देखने का. क्योंकि हमने बचपन से टीवी एक्टर एक्टर सबको देखा है, क्योंकि हम उनको देख देख के बड़े हुए हैं. जितना प्यार उन लोगों को मिलता है ना, दूसरों को लगता है कि अच्छा काम है, बट उसके पीछे कितनी मेहनत है, उसके पीछे कितना प्रोसेस है. एक्टिंग इज नॉट ईजी. जैसे मैं अगर 10,000 लोगों से मिलता हूँ ना, उसमें से 1 कैन एक्ट.
और ये टैलेंट बेस्ड है कि हार्ड वर्क बेस्ड?
टैलेंट बेस्ड.
वाह, मतलब ओके.
हार्ड, ऑफकोर्स आप हार्ड वर्क कर करके अपने को इम्प्रूव करके लगे रहो, यू विल डेफिनेटली मेक योर स्पेस, बट अल्टीमेटली इट्स अ प्योर टैलेंट. यू कैन इम्प्रूव एंड यू कैन ऑफकोर्स ग्रो इन द प्रोसेस.
लेट्स गो वन लेयर डीप सर. टैलेंट कहाँ से आता है? ये आपके लाइफ के एक्सपीरियंस से,
अंडरस्टैंडिंग से, लाइफ के अंडरस्टैंडिंग से आता है, आपके आपके सर्कल से आता है, आपके फैमिली सिचुएशन से आता है, आपका कितना इंटरेक्शन लोगों के साथ है, आपके खुद के एजुकेशन क्या है, किन लोगों के साथ आपने इंटरेक्ट किया है, तो उससे आपके एक्सपीरियंसेस से आपके जो लाइफ ग्रो होते हैं उससे एक्टिंग आती है. वो बहुत ज़रूरी है. कि कई लोग होते हैं ना, जैसे जिनको लाइफ का कुछ, तभी तो लोग बोलते हैं कि जाके लोगों से मिलो, ट्रैवल द वर्ल्ड, मीट पीपल, रीड बुक्स, डू सम थिएटर, कहीं दूर चले जाओ, लोगों को समझो, एक शहर से दूसरे शहर में जाओ. क्योंकि आप जब लोगों को देखते हो, पढ़ते हो, चीज़ों को समझते हो, तो आप ग्रो करते हो एज अ पर्सन. वो सब एक्सपीरियंसेस एक्टिंग में काम आते हैं.
ओके, इसे ज़्यादा समझाने के लिए मैं आपको रणबीर कपूर के बारे में पूछना चाहूँगा. हर किसी को पता है कि he is one of the most talented actors.
He is, no doubt.
Probably ever of
in recent generation में he is the best actor.
Best actor, okay.
Yeah.
तो वो best actor बने कैसे हैं? It's talent based. Definitely उनके खून में
भी है. खून में भी है, और also family, इतना जब घर पे एक माहौल होता है ना, पूरे फैमिली में जब आप सिनेमा की बात करते हो,
okay.
लगातार कैरेक्टर की बात करते हो, तो आपके सबकॉन्शियस में एक ही फील्ड चलती रहती है.
जितने भी फिल्म फैमिलीज में से निकले हुए एक्टर्स हैं, आपका फेवरेट कौन है क्राफ्ट वाइज, अदर देन रणबीर कपूर?
आई थिंक फरहान अख्तर.
ओके,
बिकॉज़ इन ऑल लेवल, इवन टर्म्स ऑफ राइटिंग, इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग, सुशील मिल्खा सिंह, वो उसका क्राफ्ट बहुत अच्छा है.
उनके भी खून में है वैसे,
100% खून में है. अगर आपने इंडस्ट्री के पूछा तो आई वुड से फरहान अख्तर, बिकॉज़ okay. इफ यू सी Rock On, then you see Milka Singh, then you see that film
Kartik Calling Kartik,
and one more film with Hrithik and everyone, Zindagi Na Milegi Dobara, and see as a writer, as a poet, as a director. So ye sab bhi to aap industry se nikle ho na, ye sab bhi to improvement hoti hai.
Main Alia Bhatt ko bhi is sawal mein count nahi kar raha hu, wo
bhi main samajh gaya tha. पर वो भी इज अमेजिंग एक्टर. यू सी हाईवे के बाद जो हुआ, क्योंकि हाईवे के बाद से अब तक यू सी टिल उड़ता पंजाब और राजी, आप देखो.
और जो उनकी ब्रांड इमेज थी तब वर्सेस ब्रांड इमेज नाउ, अभी वो लिटरली आई फील क्वीन ऑफ बॉलीवुड बन चुकी है. तभी उनकी ब्रांड इमेज थी वो कॉफी विद करण एपिसोड के बाद लोग उनका मजाक उड़ाते थे, ये वो.
तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो बहुत अच्छा हुआ है.
क्यों?
क्योंकि सडनली जो स्विच हुआ है ना, लोगों की अटेंशन बहुत जल्दी गई है. सडनली वो जो पहले सडनली आपके ऊपर बहुत सारे लोग जोक कर रहे हैं जोक कर रहे हैं जोक कर रहे हैं, सडनली आपने ऐसा कुछ कर दिया फाड़ दिया सबका मुंह बंद कर दिया. वो अच्छा होता है क्योंकि लोगों ने वो बहुत बड़ा वाला चेन इतना विजिबल था कि सबके मुंह बंद हो गए. कभी लोग आपके साथ बहुत सारा जोक करते हैं जोक कर सडनली वो एक्टर जो है ऐसे फाड़ कर निकल जाते लगता है शिट आई वाज रॉन्ग.
प्लस उतना ज्यादा प्रेशर फेस करने के बाद भी उनका कैरेक्टर शायद बदला होगा इंटरनली व्हिच वुड हैव हेल्प्ड
हैपन. हम लोग बोलते नहीं है लेकिन उनका एक एक सोशल मीडिया कमेंट पढ़ के जो इंटरनली भी दुख होता होगा वो कहीं ना कहीं आपको हेल्प करता है. कि मैं बताता हूँ
मैं बताती हूँ
वेट. वो जो है ना वो पेन वो आपकी परफॉर्मेंस में ऐड होता चला जाता है. एवरीथिंग की बैडिंग आपके सारे इमोशन जो है ना वो और ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं आपके अंदर वो और ज्यादा डेवलप हो जाते हैं कि अभी बताती हूँ या अभी अब यू सी द पेन इन द परफॉर्मेंस यू सी उड़ता पंजाब यू सी राजी यू सी द फिल्म यू पॉज एंड सी द सीन्स यू सी हाईवे का वो स्पीच हाईवे का वो जो स्पीच है जब वो बोलती है कि नाना जी मुझे वो जो चॉकलेट वाला सीन है फैमिली के सामने वो सीन जो है बम्बई में मैं जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस के साथ वर्कशॉप करता हूँ ना सबको वो सीन करना है. उसने ऐसा बेंच मार्क सेट कर दिया है वो सीन का कि हर लड़की उस सीन को जैसे एक जमाने में जब भी मैट का सीन परफॉर्म करते थे लोग अभी लोग हाईवे का सीन परफॉर्म करते हैं क्योंकि उसने इतना अच्छा वो परफॉर्म कर दिया है कि लोग उसको बेंच मार्क मानते हैं यंग लड़कियाँ फॉर परफॉर्मेंस.
आई फील बहुत सारे यंग लड़के भी
एवरीवन एक्टिंग है. एंड ऑल्सो क्योंकि मैं इसलिए लड़कियां बोला क्योंकि हर फीमेल का ना फीमेल के साथ ही एक इंटरेक्शन ज्यादा डेवलप होता है. क्योंकि मुझे वो बनना है उससे इंस्पायर होना है. आई थिंक इट्स अमेजिंग. बट मैंने सिर्फ फरहान अख्तर बिकॉज आई नो कि वो जिस तरह से ग्रूम हर डिपार्टमेंट में है वो बहुत कम लोग होते हैं.
आलिया भट्ट के बारे में थोड़ा सा ज्यादा बात करना चाहूंगा. आपको क्या दिखाई दे रहा है उनके रिसेंट परफॉर्मेंसेज में गंगूबाई में? मुझे पावर दिखाई दे रहा है कि समवेयर उनमें एक पावर आ चुका है.
नहीं पावर तो ऑफ कोर्स है पावर से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन इमोशन कि इस सिचुएशन पे आदमी क्या सोचता होगा. इफ यू सी रिसेंटली आलिया भट्ट इन उसकी आंखों में और चाल में देयर इज सडनली देयर इज अ मैच्योरिटी ऑफ एन एक्टर. वो तभी आती है जब आप चीजों को और बेटर तरीके से समझते हो. यू डोंट टेक आलिया भट्ट कैजुअली नाउ. आई थिंक वो जो पावर है जो तभी आती है जब आप अंडरस्टैंड बेटर जब आप श्योर होते हो अपनी एक्ट एज एन परफॉर्मेंस को लेके. यू आर नॉट ओवर कॉन्फिडेंट बट यू आर कॉन्फिडेंट व्हेन यू आर 100% श्योर अबाउट योर स्टेप्स योर मूव एज एन एक्टर देन यू श्योर. इवन योर इंटरव्यू के उसके सवाल जब आप जो बातचीत होती है यू लिसन लास्ट 10 इंटरव्यू गेट टू नो कि सडनली द चेंज इन हर अंडरस्टैंडिंग अबाउट लाइफ एंड क्राफ्ट इज फुल्ली चेंज.
बड़ी होता क्यों है
आप समझते हो ना चीज़ों को. आपके आसपास के लोग आपको रियलाइज कराते हैं आपकी गलती से आपको रियलाइज होता है. सडनली एक दिन आपको हिट करता है शिट आई एम गोइंग रॉन्ग आई वाज गोइंग रॉन्ग. तो सडनली आपको कुछ हिट करता है वो आपकी लाइफ चेंज कर देता है.
ओके मैं मृणाल ठाकुर के बारे में बात करना चाहूंगा उनके स्क्रीन प्रेजेंस के बारे में बात करना चाहूंगा.
मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड है बहुत अच्छी सुपर 30 से लेकर अब तक का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है.
आई फील कि उनकी बहुत ग्रोथ अभी बाकी है. लोगों ने पूरी उनकी ग्रोथ देखी नहीं है बट शी इज गॉट वेरी मैग्नेटिक स्क्रीन प्रेजेंस. मतलब उनके जैसे स्क्रीन प्रेजेंस मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है. टेक दैट अगेन उनके उन वैसा स्क्रीन प्रेजेंस मैंने बहुत टाइम के बाद देखा है.
हाँ आई एग्री क्योंकि वो फिल्म जो लास्ट उसने किया सीतारामन उसके अंदर जैसे वो लगी है आई डोंट थिंक सो एनीवन कैन लुक लाइक दैट.
मतलब मैंने जर्सी भी देखी है और फिर ऋतिक रोशन के साथ सुपर 30 भी देखी है. उसमें भी शी स्टोल द शो जस्ट वो थोड़े सीन्स थे बट क्योंकि बहुत ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस
क्योंकि एल्टली जब हम सुपर 30 कास्टिंग कर रहे थे ना मृणाल हमने बहुत से लोगों को ऑडिशन किया था क्योंकि वो इतना बड़ा रोल नहीं था कि हम किसी उस वक्त ऐसा बोलते हुए बहुत अजीब लगता है कि किसी बड़ी हीरोइन के पास जाए बिकॉज वो रोल बहुत छोटा था. ओनली हैड फोर टू फाइव सीन्स. सो एक अपॉर्चुनिटी थी टू कास्ट अ न्यू गर्ल एंड शी गेम एंड गिव दैट वन टेस्ट. वो फोन सीन का ऑडिशन था जो आज भी मेरे पास है जो मेरे क्लासेस में लोगों में देखा था. उस सीन में जिस हिसाब से उसने ऑनेस्टी से किया था फिर मैं बार बार बोलता हूँ ऑनेस्टी के बारे में जितना प्योरिटी से उसने वो सीन को परफॉर्म किया था. आई थिंक जिस दिन उसने ऑडिशन दिया था उसके आधे घंटे बाद वो लॉक हो गए थे.
पर इतना ज्यादा स्क्रीन प्रेजेंस कैसे आता है किसी में?
अब क्योंकि स्क्रीन प्रेजेंस जो आप डेवलप नहीं कर सकते हो.
शाहरुख खान में पहले से था, कभी हाँ कभी ना देखी आपने?
अरे फौजी देखा है तो फिर तो उनके अंदर पहले से था. मतलब कैमरा, कुछ कुछ लोगों को कैमरा बहुत प्यार करते हैं. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक्टिंग करते वक्त आप अच्छे लगने चाहिए, आधा काम का वही हो जाता है.
ओके,
जचने चाहिए एक्टिंग आप पे, जैसे कपड़े जचते हैं ना, एक्टिंग आप पे जचनी चाहिए.
और किसमें ऐसा स्क्रीन प्रेजेंस?
रणबीर कपूर, उस पर एक्टिंग जचती है. मतलब वो खड़ा होता है उस पर, राजकुमार राव पे एक्टिंग जचती है. इफ यू मीट इन पर्सन आपको लगेगा कि नहीं, ऐसे ही आप उसको कैमरा में देखोगे. नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी, उन पे एक्टिंग जस्ती है. यू सी भिकू मात्रे, यू सी अलीगढ़, यू सी द लास्ट ऑल मनोज वाजपेयी, यू सी हाउ ही इज, उन पे फैमिली मैन, उन पे एक्टिंग जस्ती है. पहले आपको जसनी चाहिए.
ये होता क्यों है? ये बॉडी लैंग्वेज की वजह से?
ये होता है व्हेन यू आर कनेक्टेड विद योर परफॉर्मेंस एंड विद द गॉड, विद प्योरली व्हेन यू कनेक्टेड विद योर हार्ट एंड सोल, विद प्योरिटी विद यू व्हेन यू कनेक्टेड विद योर हार्ट.
जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं.
जिसे फ्लो, या करेक्ट, जिसे फ्लो स्टेट कहते हैं, बिल्कुल जुड़े हुए अपने साथ. देन आप किसी और चीज के बारे में नहीं. और मुझे लगता है एक्टिंग लाइक मेडिटेशन. जब आप पूरी तरह से जुड़े होते हो ना, तो आप प्रेजेंस आपके और उससे बेटर लगने लग जाते हैं. लुक एट विक्की कौशल. विक्की कौशल, यू सी मसान का, मैंने उसका संजू के जब ऑडिशन किया है, रमन का ऑडिशन किया है, मसान का, यू सी धीरे 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 वो ऐसा ग्रो हुआ आपके दिमाग में, बिकॉज ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप हुई है. वो अच्छा लगे जब आप उनको इन पर्सन में लोगे तो आपको रियलाइज नहीं होता कि अरे ये वही है. जैसे जो मीर नवाज, विल बी सिटिंग इन वन कॉर्नर, यू वोंट रियलाइज. जैसे वो कैमरे के सामने आता है, द कैमरा लव्स हिम.
ये डेवलप नहीं कर सकता.
ये डेवलप नहीं कर सकते. ये आप तभी करते जब आप पूरी तरह से कनेक्टेड हो अपनी सोल के साथ.
एक तांत्रिक आए थे शो पे,
हाँ,
उन्होंने बेसिकली यही कहा कि कांतारा के एंड में जो क्लाइमैक्स दिखाया गया वो एक डिवाइन एनर्जी थी उस क्लाइमैक्स में. यानी कि भगवान खुद आ गए उस क्लाइमैक्स में, और इसलिए जिन लोगों ने कांतारा देखी थी एंड में ना, उनके हाथ ऐसे जुड़ गए स्क्रीन के सामने
ऑटोमेटिकली.
आप बेसिकली फ्लो स्टेट को समझाने के लिए यही कह रहे हो कि कुछ हायर एनर्जी आ जाती है लोगों में, जिनकी वजह से उनकी एक्टिंग ज्यादा बेहतर हो जाए.
वो होनी चाहिए. हम सबके लाइफ में ना एक एनर्जी वाइब होती है, सबके लाइफ में होती है, अच्छी बुरी नेगेटिव पॉजिटिव एक एनर्जी होती है. उस कैरेक्टर की एनर्जी अगर आपने पकड़ लेना है, चाहे वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, अगर आपने वो एनर्जी आपके अंदर आ गई, यू आर सेट. इफ यू सी कृति सेनन, यू सी हर फर्स्ट फिल्म, टू नाउ यू सी मिमी, देयर इज अ फुल ग्राफ, ग्रोथ ग्राफ यू कैन सी. क्योंकि वो आपको सडनली रियलाइज हो जाता है कि समथिंग मिसिंग इन माई लाइफ. वो सडनली आपको एक फिल्म के थ्रू मिल जाता है. फिर वो जब आपको वो सुर मिल जाता है, देन यू कंटिन्यू दैट.
ओके,
इफ यू सी कॉकटेल, जो दीपिका पादुकोण के साथ हुआ था, वो अब तक कंटिन्यू है. आप उससे पीछे नहीं जाते हो. फिर अगर आपको एक बार वो सुर मिल गया, आप एक बार कनेक्ट हो गए एज एन एक्टर विद योर हार्ट, देन यू सेट, देन आप कभी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं करोगे.
स्पिरिचुअलिटी का रोल रहता है एक्टिंग?
100%
या मानते हो?
मैं मानता हूँ.
ओके, मैं आपको ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि एज एन आर्टिस्ट, ठीक है, मैं एक राइटर हूँ. जब मैंने मेडिटेशन की शुरुआत करी, मैंने ये देखा कि मेरे खुद के दिमाग में से अलग अलग माइक्रो इमोशंस भी मैं टैप इन कर सकता था. यानी कि मान लो आपके सारे इमोशंस एक पिज्जा की तरह होते हैं, और इनिशियली आपके करियर के इनिशियल स्टेजेस में आप सिर्फ खुशी, दुख, जेलसी और गुस्से को टैप इन कर सकते हो. एक बार आपने मेडिटेशन स्टार्ट करी, आपने आप स्पिरिचुअल पाथ में घुसे, आप उस हैप्पीनेस के पीस को भी ब्रेक डाउन कर सकते हो.
100%
ज्यादा हैप्पीनेस, कम हैप्पीनेस, मीडियम.
मैं वही बोलने वाला था, गुस्सा भी होता है ना, छोटा गुस्सा, ज्यादा गुस्सा, बहुत गुस्सा. तो हर आप सबको ना टुकड़ों में और डिटेल में जा सकते हो.
मेरे जितने भी एक्टर फ्रेंड्स हैं, मैं उनको कहते थे कि मेडिटेशन स्टार्ट करो, खुद को जानो. जब खुद को जानोगे, आपका क्राफ्ट भी ज्यादा इंप्रूव होगा. बट मैं आपको पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप इंचार्ज हो, आप क्या कहना चाहोगे इसके बारे में?
100% क्योंकि मुझे खुद को जरूरत है मेडिटेशन की. क्योंकि जब आप एक अपने आप को कंट्रोल करते हो चीज़ों को लेकर, आप बेटर काम कर पाते हो. आपको हर कैरेक्टर के बाद एक पीस चाहिए होता है टू कम आउट ऑफ दैट कैरेक्टर एंड गेट इनटू अनदर कैरेक्टर. तो आपको अपने आप को भी होल्ड करने के लिए मेडिटेशन चाहिए. कि जैसे मनोज वाजपेयी के साथ मैंने कई बार एक्टिंग पे बात करता हूँ, तो वो क्या करते हैं, हर कैरेक्टर के बाद ना 2 दिन ब्रेक ले लेते हैं. वो एकदम ऐसे स्टेप आउट हो जाते हैं, एक सेट, अभी बस उस पर बात नहीं करूँगा. आप एक बार यार, आप किसी के अंदर घुस रहे हो, तो आप अपने सारी इमोशन सारी फीलिंग उसके अंदर डाल रहे हो, पर अल्टीमेटली वो आप ही की तो फीलिंग है. फीलिंग तो कहीं खरीद के नहीं लाया ना, है तो आप ही के, रो तो आप ही रहे हो.
इरफान खान भी यही करते थे,
रो तो आप ही रहे हो, फील तो आप ही को हो रहा है, लेकिन उस प्रोसेस से आप रोज गुजरते हो तो वो आप ही है. इसलिए आपको मेडिटेशन और पीस में रहना बहुत ज़रूरी है. इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि योगा करो या माइंड को रिलैक्स करो. मैं खुद नहीं करता हूँ क्योंकि मैं खुद इसकी तलाश में हूँ कि मुझे कम मौका मिले कि मैं एक जगह बैठ जाऊँ, पर ये बहुत ज़रूरी है. जैसे मुझे याद है कि शाहिद कपूर ड्यूरिंग कबीर सिंह के टाइम पे ही वॉज ऑलवेज इन अ वेरी एजिटेटेड मूड. आई फिगर्ड कि वाई, बिकॉज वो कबीर सिंह के कैरेक्टर में था. वो दिन भर उसका एक प्रोसेस रहता था कि वो इतना इरिटेटेड, इतना एंग्री उस टच में रहता था.
आई एम अ ब्लडी सर्जन,
आई एम अ ब्लडी. और जब वो, क्योंकि वो बहुत बहुत मतलब बहुत कम लोग जानते हैं कि शायद और मैं एक क्लास में थे एनर्जी में 22 साल पहले. हम एक बैच में थे, वर्कशॉप कर रहे थे नसीर भाई के. मैं तब से देखा है वो पेप्सी के एड से लेके अब तक देखा है वो कैसे इतना, मतलब अभी वो फर्जी भी आप देखो मालूम चलेगा कि वो इतना देता है अपनी एनर्जी को, ऐसे एनर्जी को देता है कि उसको निकलने के लिए बहुत टाइम लगता है. तो वो इसलिए आपको मेडिटेशन, योगा, पीस बहुत जरूरी है.
वो हर सुबह मेडिटेशन करता है शाहिद कपूर, करता है. इसके बारे में बात नहीं करते वो, बट बहुत टाइम से कर रहा है.
हाँ, तो वो यार आपको इंटरनल पीस की जरूरत होती है. आप इतना कुछ देते हो एज एन एक्टर, कोई खाली जॉब नहीं है. खाली नहीं है कि यार एक्टिंग है. वैसे मुझे आई हेट दोस्त भी बोलते ना, क्या करते हो, ऐसे एक्टिंग सेक्टिंग में ट्राई कर रहा हूँ. ऐसे दो, इफ यू कांट रिस्पेक्ट द जॉब ऑफ एन एक्टर डोंट से. कभी सुना है किसी डॉक्टर को बोलते हो कि मैं डॉक्टर शॉक्टर हूँ,
सर्जरी करने जा रहा
हूँ, सर्जरी करने जा रहा हूँ, दांत तोड़ने जा रहा हूँ. नॉट, जब आप से यू आर एन एक्टर, एटलीस्ट यू शुड नो द प्रोसेस ऑफ एन एक्टर, यू शुड रिस्पेक्ट द जॉब.
और कोई एक्टर्स है जो मेडिटेशन और योगा की वजह से आगे निकल गए रेस में? आलिया भट्ट में भी,
आलिया भट्ट में भी, कृति, क्यारा, देखो दिन ब दिन ग्रो होते चले जा रहे हैं. आप देखो
योगा मेडिटेशन करते
हैं, 100% ग्रो हो रहे हैं. और वो ऐसे पैप के लिए योगा नहीं करते हैं कि आएंगे तो कि योगा स्टूडियो से निकल कर आ रहे हैं. वो एक्चुअली में कर रहे हैं
बैलेंस के लिए,
बैलेंस के लिए कर रहे हैं. वो किसी के लिए नहीं कर रहे, बैलेंस के लिए कर रहे हैं. क्योंकि वो आपको, ऑफकोर्स आप, आई अंडरस्टैंड करते हो, आप तो जिम जाके वर्कआउट करके डाइट प्लान करके भी आप अपने आप को फिजिकली फिट रख सकते हो, और मेंटली फिट रखने के लिए लोग कर रहे हैं योगा या मेडिटेशन, ये उसके लिए कर रहे हैं. फिट रहने के लिए तो आपके पास वर्कआउट करो, डाइट करो, हायर अ बिगेस्ट ट्रेनर और सब मिल जाएंगे आपको. लेकिन पीस के लिए तो आपको खुद ही इस प्रोसेस में जाना पड़ेगा, जो आप अपने आप से कनेक्टेड हो, व्हेन यू कनेक्टेड टू द गॉड.
और उस कनेक्शन से क्राफ्ट आपका बेहतर होता जाएगा,
होना ही चाहिए. और क्या है, मैं भी तो जब कास्टिंग करता हूँ तो मेरे को भी एक प्रोसेस में जाना पड़ता है ना कि फिल्म कैसी होगी, इस फिल्म का सेटअप गुजरात में है क्या, तो सोचना है उसमें कैसे कैसे कैरेक्टर दिखेंगे, कैसे कैसे फेस दिमाग में आएंगे, कैसे कैसे मुझे लोग ढूंढने हैं कि दंगल में कैसे लोग होंगे, सुपर सिटी में कैसे बच्चे दिखेंगे. बिकॉज मेरे पास तो कुछ नहीं है, आई ओनली विजुलाइज द कैरेक्टर. मैं तो पहले विजुलाइज ही करता हूँ ना, मुझे तो पेपर में लिखा है मैं पढ़ता हूँ कि क्या दिख रहा है मुझे.
क्योंकि बातें इतनी डीप हो चुकी है सर, आई हैव टू आस्क यू अबाउट सुशांत सिंह राजपूत.
आज तक मैं लोगों को नहीं बोलता हूँ कि जब मुझे कहीं नई लोगों से मिलता हूँ ना, मैं नहीं बोलता कि दिल बेचारा मैंने बनाया. मैं भी बोलता हूँ कि मैंने फर्स्ट फिल्म नहीं बनाई, क्योंकि वो सब उसकी वजह से हुआ है. जो हुआ भगवान मालिक है, भगवान बताए, वो सब सिचुएशन हुआ. तो मैं उस फिल्म के बारे में भी बात नहीं करता हूँ, लेकिन सुशांत के बारे में मुझसे जितना बोलोगे बात कर सकता हूँ. मुझे आज भी जब लोग बोलते हैं कि अरे यू डायरेक्टर दिल पे चारा, मैं बोलता नहीं, है ना, इट्स वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू से नो. क्योंकि मुझे लगता है कि वो क्रेडिट उस फिल्म का इज एवरीथिंग बिलोंग टू सुशांत सिंह राजपूत. वो था एक एक्टर जो प्रोसेस में बहुत बिलीव करता था, चाहे वो दिल पे चारा का प्रोसेस हो, चाहे वो धोनी का प्रोसेस हो, आई सीन सो क्लोजली, चाहे वो छिछोरे का प्रोसेस हो, चाहे वो केदारनाथ का प्रोसेस हो, तो वो बहुत प्रोसेस में बिलीव करता था. वो
मतलब क्या,
वो स्टडी करता था कैरेक्टर को, वो पढ़ता था, उस तरह से बिहेव करता था. वो केदारनाथ के टाइम पे अपने वॉकआउट घर के अंदर वो पूरा एक हैवी वेट लेके करता था, क्योंकि उसको केदारनाथ में वो पूरा सिचुएशन में ऐसे जाता था. इन दिल बेचारा के टाइम पे उसको एक पैर से लिम करना था, तो वो पूरा दिन हल्का सा लिम करता रहता था, वो कौन सा ऐसा नहीं कि सिर्फ कैमरा के सामने, वो पीछे भी, और वो कमिटमेंट वाला लड़का था बहुत। उसने मुझे काय पूछे के टाइम पे बोला था कि भाई जब अपनी पहली पिक्चर बनाओगे ना मैं करूँगा। जब फिल्म की बारी आई मैंने बोला मेकिंग में फर्स्ट फिल्म, बोला आई एम डूइंग इट, मैंने बोला कहानी तो सुन ली, बोला बाद में सुन लूँगा। कमिटमेंट और मैन ऑफ हिज वर्ड,
बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं उनके बारे में, क्योंकि लाइफ में ये हो रहा था पहले, लॉकडाउन से पहले उनका मूड अच्छा नहीं था, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं थी। आप उनके साथ तब फिल्म बना रहे थे, आप कुछ नोटिस हुआ कि मेंटल हेल्थ
नहीं,
नॉर्मली थे वो?
नहीं, सब कुछ नॉर्मल, क्योंकि हर एक्टर आर्टिस्ट के ना बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं, आप हर चीज़ को मेंटल हेल्थ के साथ नहीं जोड़ सकते हो। कल को इफ आई मीट यू और आई सी यू, यू आर इन अ वेरी डिफरेंट मूड, डजंट मीन आपके मेंटल में कुछ, आप सोच रहे हो कुछ प्रॉब्लम, नहीं, आप एक कैरेक्टर हो सकते हो, आपके दिमाग में कुछ थॉट चल रहा है, यू डोंट वांट टू टॉक टू पीपल, यू आर इन अ डिफरेंट स्पेस, इज एब्सोल्युटली फाइन। हम लोग बहुत जल्दी एक डिसीजन पे आ जाते हैं कि मेंटल हेल्थ भी बहुत, एंड बहुत इस शहर में और इस हिंदुस्तान में हर जगह ना मेंटल हेल्थ को बहुत कैजुअली बोलना शुरू कर दिया। थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो गया यार, तू टेक कर ले, तुझे कोई मेंटल प्रॉब्लम तो नहीं हो गई? हम ना इन बहुत बड़े बड़े शब्दों को ना बहुत जल्दी कैजुअली यूज करने लग गए हैं। मेंटल हेल्थ इज अ वेरी डिफरेंट इशू, जो जिससे गुजरता है ना वो बंदा ही बता सकता है। एज पर माई नॉलेज आई डोंट थिंक सो कि वो किसी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा होगा।
आई एम श्योर कि आपके उनके साथ डीप कॉन्वर्सेशंस हुए होंगे।
बहुत,
वो थे कैसे?
बहुत मस्त लड़का था यार, बहुत ही एंटरटेनिंग और डिसिप्लिन, वेरी वेल एजुकेटेड, वेल रेड अबाउट प्रोसेस, अबाउट काम। उसकी अपनी अपनी एक दुनिया है, उसको अपना एक वर्ल्ड में रहना बहुत अच्छा लगता था। अपने काम को प्रति वो बहुत सीरियस था, उसको हमेशा कुछ अच्छा नया चीज़ करनी थी, वो रोज 50 आइडिया लेके आता था। वो इतना क्रिएटिवली इन्वॉल्व था अपने आप के साथ कि उसके पास 1000 आइडियाज थे।
कनेक्टेड टू द हायर पावर,
कनेक्टेड टू द हायर पावर। वो हमेशा वो बैठे हो गया, उसको आइडिया दे दो, उस आइडिया को, हम लोग क्या करते हैं बहुत सारे आइडियाज के बारे में बात करते हैं, वो आइडियाज को प्रैक्टिकली करने में बिलीव करता था। क्योंकि हम तो कमरे बैठ के आइडियाज बात करते हैं, अरे ये करते हैं, वो करते हैं, फाड़ देंगे, वो एक्चुअली करता था। अगर वो पॉइंट लिखता था ना, डन 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 डन, हम लोग एक लिस्ट बनाते ना चेकलिस्ट, वो भी चेकलिस्ट बनाता था, पर वो चेकलिस्ट पूरी करता था।
कमिटमेंट,
कमिटमेंट। हम लोग तो वो वाले लोग हैं ना जो हर 1 जनवरी को एक रेजोल्यूशन बनाते हैं, वो कभी पूरा नहीं होता। वो लिखता था तो करता था, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग बात थी उसके अंदर।
क्या प्लान्स थे उनके आगे के?
काम करना था उसको,
बहुत फिल्म्स बनानी,
बहुत फिल्म बनानी थी, प्रोड्यूस करना था, एक्ट करना था, नासा जाना था,
एआई की कंपनी
बनानी थी, और भी सोशल इशू बहुत करना था, एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करना था। मैं कह रहा हूँ इतने सारे आइडियाज, इतना सारा दिमाग, इतना सारा रनिंग, बहुत कुछ करना था उसको।
Do you feel कि he had it in him to reach Shahrukh Khan's level at some point?
Yeah, of course. And he was a huge fan of Shahrukh sir. Huge fan. I remember जब भी शाहरुख सर का गाना आता था ना, मैं तो प्ले कर दूँ वो सब, हम किसी भी पार्टी में या किसी के बर्थडे में कॉमनली के मिलते भी हैं, जब मिले भी थे, सिर्फ शाहरुख सर गाना चलाने की बात थी, बाकी सब अपने आप हो जाता था।
बहुत हैवी महसूस अभी भी हो रहा है। I'm sure even you're feeling the same.
इतने साल हो गए ना, उसके बाद भी यू फील वेरी हैवी उसके बारे में बात करना, क्योंकि जब भी अभी भी रिसेंटली उसका बर्थडे था जब मैंने पूछती, तो बहुत अजीब सा लगता है।
आई फील कि अभी भी वो इन बातों को,
मेरे से था नहीं बोला जाता। एंड ऑल्सो द गुड थिंग और बैड थिंग अबाउट सोशल मीडिया कि वो आपके पुराने वीडियोस, पुराने टॉक्स, पुराने इंटरव्यू इतना फ्लोट होते रहते हैं कि आपको लगता है बंदा तो वहीं पर ही है अभी। इफ यू सी, आप कभी कभी रील को स्क्रॉल कर रहे हो या अपना इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो, तो यू सी वो वीडियोस, पुराने वीडियो निकल आते हैं ना, वो छोटे छोटे क्लिपिंग्स होते हैं आपके इंटरव्यू के, आपके गाने के, आपके म्यूजिक वीडियोज के, आपके फिल्म के सीन्स के, तो वो सीन्स आपको लगता है आसपास ही तो हो, आपके आसपास ही तो, इतना सडनली फॉर अ मोमेंट यू थिंक यार।
I feel specifically आपके लिए बहुत अजीब सिचुएशन है क्योंकि आप उनके लास्ट डायरेक्टर थे। That's so strange.
Yeah. और उसका फर्स्ट कास्टिंग डायरेक्टर उसकी पहली फिल्म क्या बोल रहे हैं. नाउ आई वांट टू मेक माई सेकेंड फिल्म बट आई एम स्टिल प्रिपेयरिंग माई सेल्फ बिकॉज आई थिंक वो जो मेरी सेकेंड होगी वो मेरी फर्स्ट होगी. क्योंकि फर्स्ट की जो फीलिंग है मुझे मालूम नहीं कैसी होती है पिक्चर रिलीज होने के बाद, क्योंकि वो तो मैंने जी नहीं पूरी दुनिया पिक्चर देख रही है, पूरी दुनिया क्राई, पूरी दुनिया रो रही है. आई गेटिंग मैसेजेस फ्रॉम एवरी डायरेक्टर, एवरी एक्टर, नॉर्मल पीपल आर पोस्टिंग पूरी दुनिया एंड आई एम नॉट हैप्पी. मुझे खुशी नहीं हो रही है उस बात की कि पिक्चर दिल बेचारा इज डूइंग सो वेल, दिल बेचारा ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया, दिल बेचारा ने वो रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो मैं क्या करूँ क्या करूँ. मेरे को तो शेयर करना था उसके साथ ना.
आई फील कि जनरली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा बैकलैश मिला उस घटना के बाद. और ये मैं आपको डिजिटल जनता की बातें रिले कर रहा हूँ. अक्सर जब मैं इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से ये बात बोलता हूँ वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते हैं. आप अनकंफर्टेबल नहीं हो, आप खुल के बात कर रहे हो, आई कैन फील इट. और पूरा एक नैरेटिव आ गया था कि अभी बॉलीवुड हैज एंडेड, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हैज एंडेड, ये सब. और फिर पठान आ गई.
वो जो नैरेटिव था ना, वो जिन लोगों ने क्रिएट किया था इसका जवाब वही दे पाएंगे.
हाँ जी,
इसका जवाब वही दे पाएंगे जिन लोगों ने क्रिएट किया था वो नैरेटिव, कि वो क्यों क्रिएट किया था. हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है फिल्म इंडस्ट्री. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि बहुत जल्दी हम सब कुछ जज करने लग जाते हैं एक सेकंड के अंदर. पहले तो अभी ये भी डिबेट था कि साउथ फिल्म इंडस्ट्री ने बॉलीवुड फिल्मों को खा लिया, फिर पठान आ गए, अभी जवान आएगी, अभी डंकी आएगी, आप देख लेना क्या होगा, अभी भूला आने वाली है. ये सब ग्रेट फिल्म्स हैं, ये ग्रेट स्टार हैं, ये इनको देख के हम लोग बड़े हुए हैं. तो इतना आसानी से किसी को बोल देना इट्स नॉट दैट इजी.
बहुत सारी अच्छी फिल्में आ रही है,
बहुत कुछ आने वाला है. बहुत अभी तो राजकुमार सर की डंकी आएगी, एटली के जवान आएगी, शाहरुख सर की जो सलमान भाई की अगली फिल्म आने वाली है, तो अभी तो मतलब राजकुमार की 3 फिल्में आने वाली है बहुत कमाल कमाल की, कार्तिक की फिल्में आने वाली है, आयुष्मान की आएगी ड्रीम गर्ल, एंड वो सब, ये सब जो टेम्प्रेरी फेज है ना, ये सबकी जिंदगी में आता है. वो हर बिजनेस में भी आता है,
हर इंडस्ट्री में,
हर इंडस्ट्री में आता है, हर फैमिली में आता है, अप्स एंड डाउन. ठीक है, ये टेम्प्रेरी फेज था हमारी जिंदगी में, पर उसके पीछे एक उसको दरिया मत बनाओ ये बोलने के लिए.
कुछ फिल्म्स को हाईलाइट करना चाहोगे जो 23 में आ रही है एज एन इनसाइडर?
जवान, डंकी, भीड़ अनुभव सिन्हा की फिल्म, और बाकिंग मर्डर हंसल मेहता की पिक्चर, और शहजादा सबको मालूम ही है, भोला आने वाली है सबको मालूम ही है.
आपके अकॉर्डिंग ये सब सुपरहिट बने?
ये सब बहुत अच्छे, सब बहुत अच्छी फिल्में हैं. okay. बहुत 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 ये कमाल की फिल्म है, जो मतलब लोग बोलेंगे कि वाह क्या फिल्म है. सलमान भाई की फिल्म है कि अभी ईद पे इतना प्यार, अभी पठान में सलमान भाई शाहरुख सर को मिला, अभी और आना है. अभी तो प्यार शुरू हुआ है, अभी तो आने वाला है. ये और कौन थी जो फिल्म जिसपे लोगों की नज़र होगी, एक बवाल आएगी वरुण धवन की फिल्म नितेश तिवारी, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है. क्योंकि आई वर्कड ऑन द फिल्म तो आई नो कि बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है. मैडॉक की 2-3 फिल्में हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आने वाली है. वो श्रीराम राघवन की मैरी क्रिसमस आएगी जो बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है. So,
आज के जमाने में व्हाट वुड काउंट एज अ हिट फिल्म? मतलब हिट फिल्म का कोई फॉर्मूला होता नहीं, बट 23 में
जिस फिल्म के बारे में सब बात करें ना, वो हिट फिल्म होती है.
कल्चरली इम्पोर्टेंट,
कल्चरली इम्पोर्टेंट हो, सब उसके बारे में बात करें. फिल्म का मतलब क्या होता है? फिल्म देख के आते हैं, उसके बारे में बाहर निकल के बात करें. जब लोग फिल्म के बारे में बाहर निकल के बात करने लगे सब लोग कि बहुत अच्छी जाके देखो, बहुत अच्छी जाके देखो, और किसी को स्पेसिफिकली पूछो क्या अच्छा है ये नहीं बता पाएंगे, पर उनको मजा बड़ा आया. क्योंकि बहुत सवाल ऐसा है ना, किसी को क्या अच्छा लगा, किसी को क्या अच्छा लगा, किसी को क्या अच्छा लगा. हम तो बड़ी से बड़ी फिल्म के अंदर भी कमी निकाल सकते हैं जो सब लोग बात करें ना. जैसे मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे शोज, देखो ना सारे शो नंबर वन हो जाते हैं सोशल मीडिया पे, देखता हूँ ना हर शो ट्रेंडिंग नंबर वन. फिर लाइव होता है कि उनका खुद का प्लेटफॉर्म है ना, वो कहीं भी ऊपर नहीं डाल दें, लेकिन जो शो के बारे में लोगों ने बात किया स्कैम, इसके बारे में सब ने बात किया, सब ने देखा, दिल्ली क्राइम, सीक्रेट गेम, फैमिली मैन, जिसके बारे में सब ने बात किया. मिर्जापुर जिनके बारे में सबने बात पता लो जिसके बारे में सबने बात किया. ऐसे तो चार जिस शो को देखता हूँ मैं जाता हूँ नंबर वन रेमेंड ने बोला ये भी तेरा भी नंबर वन है इसका भी नंबर वन है इसका भी नंबर वन है इसका भी नंबर वन है और उसके बारे में किसी से पूछो तो किसी को मालूम नहीं होता है. वो शो के बारे में जिसके बारे में सबको मालूम हो जो हर क्लास के लोगों को मालूम हो हर जगह लोगों के बारे में बताओ हर स्टेट में लोगों के बारे में बताओ उसके वो शो हिट होता है. ये तो मैं तो खुद अब लुक दूंगा नंबर वन ट्रेंडिंग इस थोड़ी ना होता नंबर वन ट्रेंडिंग.
आपको बेसिकली सोशल सर्कल्स में नोटिस करना होता है कि किन शोज किन फिल्म्स की बात है
जिसके बारे में मेरी माँ को भी मालूम हो मेरी मासी को मालूम हो मेरे दोस्त मेरे स्कूल टीचर मालूम अरे स्कैम देखा था फैमिली मैन देखा था या मिर्जापुर देखा था या पताल लोग देखा था वो किसके बारे में बात करो ना.
तो चलो पठान के बारे में बात करता
पठान मैं मतलब बायस भी हूँ फिल्म के लिए बिकॉज मैं पठान को फैन बॉय की तरह गया था. शाहरुख खान
पूरे भारत की तरह
पूरे भारत का शाहरुख खान सलमान का प्लस सिद्धार्थ आनंद वेरी क्लोज फ्रेंड है वर्किंग ऑन फाइटर विद हिम. फाइटर आएगी इसकी नेक्स्ट फिल्म हम कास्टिंग अभी चल रही है
वो भी एक स्पाई फिल्म है
वो भी एक स्पाई फिल्म है बहुत इंटरेस्टिंग फिल्म है.
यू कांट रिवील की कौन है
उसमें. आई कांट या उसमें ऑलरेडी अनाउंस है ऋतिक रोशन अनिल कपूर दीपिका पादुकोण सब उसमें ऑलरेडी अनाउंस है और अभी तो सिद्धार्थ आनंद के ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि पठान के बाद लोग फाइटर देखेंगे. तो मैं बाइक पे था मैं अपने पूरे ऑफिस को लेकर गया फिल्म देखने के लिए पहले मैं ट्रायल पे गया सिद्धार्थ के उसके बाद तो मैं तो फैन बॉय की तरह गया तो इसलिए मैं टुक माय मॉम डैड आल्सो. मेरी मम्मी से एक के बाद बोली शाहरुख खान कितना कमाल लग रहा है तो मैं समझ गया था कि भाई ये पिक्चर हिट है. इवन माय डैड वो सब सबका एक ही था कि शाहरुख खान ऐसे घर से निकले हैं जैसे यू नो बहुत टाइम के बाद दिवाली आई है वो दिवाली इसने बड़ी दिवाली सब निकले घर से बाहर.
इन पिछले पाँच साल में क्या हो रहा था उनके साथ वो सोच रहे थे प्लान कर रहे थे.
सर हाँ ऑफकोर्स शाहरुख से प्लान कर रहे होंगे क्योंकि इतना लोग बोल देते हैं ना मैंने बोला था ना कि लोग बोलते रहते हर आदमी अपनी जिंदगी के बारे में ना रोज प्लान करते हैं और ये लोग क्रिएटिव लोग हैं दे विल ऑल कम अप विद मोर आइडियाज और अपने आप को कैसे सही रखना है ये लोगों को मालूम है. अपने आप को कहते हैं ना अपना पेशेंस को नहीं लूज करना है इतने सालों तक आपकी फिल्म चार साल तक फिल्म रिलीज नहीं हुई है और उसके बाद आप आ रहे हो और आके यू टेकन ओवर एवरीवन. वो तो आई थिंक वो सोच रहे होंगे हर आदमी प्लानिंग करता है अपने लाइफ के बारे में हम भी करते हैं पर उनकी प्लानिंग बहुत बड़े लेवल पर होती है हमारी प्लानिंग छोटी सी होती होगी उनके बहुत तो सब सोच रहे थे प्लान अभी तो उनके देखना लाइनअप अभी अटली की फिल्म आएगी फिर राजू तर की पिक्चर आएगी उसी दो फिल्म. मेरा बचपन शाहरुख खान को देख के गुजरा मेरा टीनेजर शाहरुख खान को देख के गुजरा मेरा कॉलेज शाहरुख खान को देख के गुजरा और आज आई एम 40 मेरा शाहरुख खान को देख के गुजर रहा है और जब मैं 50 का होऊंगा मैं शाहरुख खान को ही देख रहा हूँ. ये सच है ये सच है सब जानते हैं
हर भारतीय के लिए
सच है कि मेरा बचपन मेरा टीनेजर मेरी जवानी मेरा 40 और मेरा 50 सब शाहरुख खान को देख के ही गुजरेगा.
उस इंसान के दिल की खासियत क्या है.
हार्ट प्योर. आप उनसे मिलोगे ना आपको एक भी ऐसी वाइब नहीं आएगी कि अरे आपका मन करेगा उसके आसपास ही रहो. कई बार ऐसा होता है लोगों के साथ मिलते हो तो मन करता है चलो यार यहाँ से वो कितना भी बड़ा स्टार हो आपकी वाइब से लगता है कि अब चलना चाहिए उसकी ऐसी वाइब है कि आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता. उसकी आंखों में प्यार वो तहजीब वो लव फॉर अदर्स वो इतना जेन्युइन है कि आपका मन ही नहीं करता. अगर आप उसको बिन ऐसा हो कि अगर आपके सामने से शाहरुख खान गुजर रहा है आप मुड़ के नहीं देखो ऐसा हो ही नहीं सकता. चाहे वो शाहरुख खान स्टार नहीं भी थे तब भी ऐसा ही होता होगा आई कैन गारंटी यू.
और वो शायद पहले से ऐसे थे इसकी वजह से उतने अर्ली करियर अपॉर्चुनिटीज मिले उन्हें क्योंकि उनके पीपल स्किल्स उनका चार्म वैसा ही था
जो लोग बताते हैं थिएटर में उनके साथ कि वो मतलब नाटक के टाइम पे भी इतने जामे होते थे. कुछ तो खुदा के बंदे होते हैं ना यार कुछ तो भगवान के बनाए लोग हैं. सलमान खान भी है शाहरुख खान भी है. कुछ लोग टैलेंट के धनी होते हैं मनोज बाजपेयी टाइप लोग हर टाइप के लोग होते हैं लेकिन सबके ऊपर एक बंदे का हाथ होता है ऊपर वाले का.
वो सफलता के चेहरे बन चुके हैं आज शाहरुख खान एंड आई फील ये ना ये भगवान की चॉइस होती है.
ये भगवान तुझे बनाएंगे बेटा ये अब तुझे बनाएंगे
आपको जो चेहरा देंगे आपको जो बाल देंगे आपकी आवाज जो सिलेक्ट करेंगे आपके लिए
वो सब आप वो कैसे होता हमको नहीं पता. आप जब आप चार्म क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप टैलेंट को ग्रूम करते हो, चार्म क्रिएट नहीं कर सकते हो, वो तो आपको भगवान ने दे दिया. आप कुछ भी ना करो फिर भी लोग आपको देखेंगे. जो भाई के अंदर, सलमान भाई के अंदर स्वैग है ना, किसी के अंदर नहीं है. वो खड़ा ही हो जाए ना, एक उनका एक बहुत ज्यादा मीम देखते हैं, वो अकेले चलते हुए आ रहे हैं रात में. तो आप देखते हो कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आदमी नहीं है भाई. तुम कितने 20 लोगों के साथ भी घूम लो और 20 पावरफुल आदमी के साथ घूम लो, लेकिन वो अकेला जब चल के आता है, पीछे लोग भाग के आ रहे हैं, एंड द वे ही इज वॉकिंग, और कुछ नहीं कर रहे हैं. वो कुछ नहीं कर रहे हैं पर बहुत कुछ कर रहे हैं. वो है सलमान खान, और वो है पठान, वो है शाहरुख खान.
शाहरुख खान के दिमाग के अंदर क्या चलता है आपके अकॉर्डिंग, जितना आपने उन्हें जाना है? क्योंकि लोग कहते हैं कि वो बहुत बिजनेस ओरिएंटेड है, बहुत शार्प है. ऐसा नहीं है, वो आर्टिस्ट ही है.
आर्टिस्ट है यार वो. हम जितनी मुझे बातें बोल रहे हैं कि आप बिजनेस में हैं, लेकिन अल्टीमेटली आर्टिस्ट आर्टिस्ट ही होता है. वो कभी वो बिजनेस में दिमाग चलेगा, उनके साथ में लोग टीम चलाएगी, सबको लेकर. तो उनका जो मेन कोर है ना
जी,
वो आर्टिस्ट ही है. उनको सेट पे देखो रिहर्सल करते हुए. आज भी मैंने इनको अभी रिसेंटली भी सेट पे देखा, फिल्म के अंदर जवान के सेट पे. आज भी उतनी ही मेहनत शिद्दत के साथ एक एक सीन को 50 बार रिहर्सल करके, स्किप करके, पूरा सीन तैयार करके, ऐसे मतलब वो आर्टिस्ट ही है. वो कोई चेंज नहीं कर सकता. आप जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन बन जाओ, लेकिन आपका मेन कोर जो है वो आर्टिस्ट है.
ट्रू एक्टर ये भी भगवान ने उन्हें स्किल दिया. मतलब ही हैड टू बिकम सक्सेसफुल. मैंने अक्सर एक्टर से पूछा कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है. शायद उनकी लाइफ का पर्पस स्टोरी टेलिंग है उनके फिल्म्स के थ्रू, और उनकी खुद
की लाइफ का पर्पस है टू रूल.
मतलब
रूल करना है अपने काम से. और वो किस में रूल कर रहा है? एक्टिंग में और चाम में, उसमें तो रूल कर रहे हैं ना. बिजनेस पे तो रूल नहीं कर रहे ना. अगर वो इतने बड़े बिजनेसमैन में शाह तो बिजनेस में रूल कर रहे हैं. वो तो लोगों के हार्ट में रूल क्यों कर रहा है? अपने क्राफ्ट से ना.
इस समाज के लिए उन्हें बनाया क्यों?
आई थिंक मैं बहुत छोटा हूँ इस बात के जवाब देने के लिए. इसलिए बनाया था कि हम लोग एंटरटेन कर सके, इसलिए बनाया कि हम इस आदमी को देख सके.
इंस्पायर.
एक आदमी ऐसा होता है ना जिससे आपको लगता है कि आप इंस्पायर होते हो. आर्टिस्ट को वो मिले. जैसे बहुत सारे यू नो हमारे देश में इतने सारे क्रांतिकारी सीनियर जो लोग हैं, उनको लिख के कितने लोग इंस्पायर्ड होते हैं जो उस फील्ड से बिलोंग कर रहे हैं. ऐसे बहुत सारे लोग हैं. आई थिंक वो हमको उनको इसलिए बनाया था कि हम सब उनको देख पाए. और हम लकी है कि हम शाहरुख खान को देख पा रहे हैं.
और जब ब्रेकअप हो जाए तो ये लगे कि हम फरारी में बैठ के ये दिल दीवाना गए.
दिल की खराबी मतलब अगर हमने शाहरुख खान गाने नहीं सुने तो लोग झूठ बोलते हैं. जिसने शाहरुख खान गाने देंगे डांस नहीं किया और ऐसे नहीं किया, वो आदमी को क्या फायदा फिर यार अगर अपने शाहरुख खान के गानों में मोहब्बत नहीं करे.
पता है बचपन में जब मैंने ये दिल वाला सॉन्ग देखा था, तब आई थिंक चैनल वी और MTV होता था, मैंने ये दिल देखा था.
हाँ.
मैंने मम्मी से पूछा कि वो कौन है, ये गाना क्या है, और उन्होंने समझा कि इनका नाम शाहरुख खान है. मैंने कहा हाँ अब से ये मेरे फेवरेट है.
वही अंदाज हमको वो विजुअली तो याद होते हैं. हमको और क्या याद रहता है? वो अंदाज और विजुअली तो याद रहते हैं.
शायद यही है पर्पस.
यही पर्पस है कि हमको हमारी मेमोरी में इतने फ्रेश लगते हैं
कि आपके जज्बात के लिए वो एक चेहरा बन जाते हैं.
और आज सबके लिए मैं कहता रहूं कि अब हम 50s के होंगे तब भी शाहरुख खान ही होगा.
TRS पर आना पड़ेगा शाहरुख खान सर को.
आना पड़ेगा सर, प्लीज आ जाओ इसके शो में आ जाइए. शाहरुख सर प्लीज इनके शो में आ जाइए. मतलब ये बहुत ही कमाल के, और आपके इतने बड़ा फैन है, उनकी बातों से लग रहा है कि आपके बारे में इतनी बात हो रही है कि आप प्लीज आ जाइए. मैं पूजा ददलानी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक मीटिंग जो है रणवीर के फिक्स कर दी जाए आपके साथ.
थैंक यू मुकेश भैया, थैंक यू. ओके वाओ. वैसे और बहुत सवाल है आपके लिए सर, पर मुझे क्यों लग रहा है कि आप फिर से लौट कर आओगे इस पॉडकास्ट पे. आपको भी मजा आया?
बहुत मजा आया भाई. अभी तो मुझे पता नहीं कब से बात कर रहे हैं हम लोग. अरे मतलब ऑलमोस्ट 2:00. बट ग्रेट. आई थिंक बहुत अच्छा इतने सारे पॉडकास्ट किए लेकिन कोई इतना अंदर नहीं घुसता है, इतना इस तरह ऐसी बातें नहीं करते हैं. और बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट एक एक आदमी है जो आपसे अंदर की बातें करता है, जो आपको और जानना चाहता है और आपकी बातों को लोगों तक पहुँचाना चाहता है. और बस मैं यही लोगों से कहूँगा कि जितने भी लोग एक्टर बनना चाहते हैं, प्लीज़ यार फोकस ऑन योर क्राफ्ट एंड जस्ट कनेक्ट विद योर सोल, नथिंग एल्स. बाकी सब भगवान अपने आप कर लेगा. और इतनी मेहनत करो मनोज वाजपेयी की तरह या नवाज की तरह या राजकुमार की तरह, इतना चाम लो शाहरुख सर की तरह कि कोई आपको मजबूर हो जाए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आपको कास्ट करने में. इतना अपने ऊपर मेहनत करो और कोई ताकत नहीं है जो आपको कुछ और बना सके. कोई नेपोटिज्म की बात नहीं करेगा, कोई किसी की बात नहीं करेगा. इफ़ यू आर स्ट्रांग इनफ, योर सेल्फ बिलीव इज स्ट्रांग, यू विल मेक इट इन दिस सिटी. ये बॉम्बे शहर है जो सबको बहुत देता है. अगर आप दिल यहाँ पे लगाओगे, अपने काम में लगाओगे, तो शहर आपको बहुत देगा. एक ही तो शहर है, यहाँ पे लोग आते हैं, यहाँ पे इतनी सारी स्टोरीज हैं, सक्सेस स्टोरीज हैं. हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा सक्सेस स्टोरी बॉम्बे में है.
बस आपको मेहनत
मेहनत एंड जस्ट बी ऑनेस्ट एंड द प्रोसेस ऑफ लुकिंग फॉर वर्क, डोंट लूज योर हैप्पीनेस
एंड डोंट लूज योरसेल्फ.
डोंट लूज योरसेल्फ एंड बिकॉज आप प्रोसेस, लोग क्या बोलते हैं कि मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ ना, ऑल द एक्टर आई सी देम वेरी डाउन सैड एंड लुकिंग फॉर वर्क. मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेटा ये प्रोसेस है, ऐसे ही होएगा. एटलीस्ट बी हैप्पी व्हेन यू लुकिंग फॉर वर्क इन द प्रोसेस. इफ यू आर नॉट हैप्पी यू विल नॉट गेट वर्क.
एंड में बस ये कहना चाहूँगा सर कि अभी हमने स्टार्स के पर्पस के बारे में बात करी. आई फील कि आपका भी एक बहुत बड़ा पर्पस है, स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री के इस फेज में, विच इज़ मेंटरिंग सिलेक्शन. और जिन चेहरे लोगों के जज्बात के साथ जुड़ेंगे, उन चेहरों को आपको सिलेक्ट करना. सो
बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डर लगता है क्योंकि इतना दिन हर बार ही हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बोलता है कि और नए चेहरे लाओ, और नए चेहरे लाओ, और नए चेहरे लाओ. जब तक मैं हूँ इस जिंदा जीवित, मैं नए चेहरे लाता रहूँगा.
मुकेश चावड़ा सर, थैंक यू. प्लीज जल्दी लौट के आए TRS पर.
थैंक यू सो मच.
तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड मुकेश चावड़ा सर के साथ. अक्सर जब हम बॉलीवुड के सितारों से बात करते हैं तो हम खुलकर ऐसे गहरे कॉन्वर्सेशंस हमेशा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके PR रिलेटेड रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं कि किन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं ऑनलाइन, किन चीज़ों के बारे में नहीं बात कर सकते. और इसलिए मुकेश सर जैसे इंडस्ट्री के दिग्गजों से बात करके, बिहाइंड द सीन्स के दिग्गजों से बात करके जो चीज़ें पता चलती है, जो पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं, जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, वो बहुत यूनिक होते हैं ऐसे पॉडकास्ट के लिए. अगर आपके दिमाग में मुकेश सर के लिए और कोई भी सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए. डेफिनेटली सर के साथ और पॉडकास्ट हमें रिकॉर्ड करने हैं. और हमें गेस्ट रिकमेंडेशंस भी दीजिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड. ये था एक बहुत ही गहरा, बहुत ही हार्टफेल्ट एपिसोड TRS का मुकेश छाबड़ा सर के साथ.